نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قانون ہدایت. آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی کو ہدایت دینے کے کیا ضابطے ہیں. ایک سوال اکثر لوگوں کو پریشان رکھتا ہے کہ اچھا جی اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں رکھا ہوا تو ہدایت مل جائے گی, اور اگر اللہ ہی ہدایت نہ دے تو پھر ہمیں کہاں سے ملے گی. ہے یہ آپ میں سے کسی کا کوئسچن؟ بچے بھی پوچھتے ہیں, بڑے بھی پوچھتے ہیں, اچھا جی اللہ نے ہی نہیں ہدایت دی تو مجھے کہاں سے ملے, اور اسی طرح کی باتیں. ہدایت کے لفظ کو نماز پڑھنا کر لیجئے, اچھا اللہ جب چاہے گا پھر میں نماز پڑھ لوں گا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تہجد کا, تو کہا ٹھیک ہے اگر اللہ چاہے گا مجھے اٹھانا تو میں پڑھ لوں گا. تو اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی ناگوار سی گزری. تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نہیں دیتا, کس کو دیتا ہے کس کو نہیں دیتا, اس سب کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے قرآن کی آیات کی روشنی میں بھی, اور کچھ ایسی باتیں جس سے آپ اور میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. آپ میں سے جو لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ ان کو پتا ہے آپ کوئی موضوع بھی لیں گے اینڈ پہ میں نے نکالنی اس میں سے یا بچوں کی تربیت ہے یا اپنی. ویسے پیار سے بتاتی ہوں, کچھ جماعتیں ہوتی ہیں نا ان کے بارے میں مشہور ہے, تبلیغی جماعت والوں نے اینڈ پہ آپ کو چلے پہ لے آنا ہے, جماعت اسلامی نے اینڈ پہ آپ کو کسی سیاسی جلسے کے اندر لے جانا ہے, اور دعوی والے دعوت میں اور جہاد والے جہاد میں. تو میں اپنے آپ کو خود ہی ایک نام دے دیتی ہوں کہ میں تربیت والی ہوں. ہم اپنا نام رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا ہو کہ اپنی اور بچوں کی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی. حقیقت یہ ہے کہ جو کام میں کر سکتی ہوں میں وہی کروں گی. ہم اکثر وہ چیزوں کو موو کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں جو ہمارے زور لگانے سے بھی ہونی کوئی نہیں. آپ اس دیوار کو موو کرتے رہیں سارا دن لگا دیں گے تو بھی آپ کا فائدہ نہیں اس میں ہو سکے گا. تو بہتر ہے کہ میں اپنا راستہ بدل لوں, میں ادھر دیوار سے ذرا ہٹ کے چلوں. آج ہم مسلمانوں کا مسئلہ بھی یہی ہے, اپنی انرجی اپنا زور اپنا شور ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں, وہ نہیں موو ہونی. ہاں جو میں کر سکتی ہوں وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آج انشاءاللہ ہم قانون ہدایت کو سمجھیں گے. یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ قرآن کا مطلوب انسان سیریز کا ایک حصہ ہے. ہمارے ہر سال کے ٹرپ کو ایک مین تھیم دے دیا جاتا ہے سہولت کی خاطر, تاکہ جب بھی بات ہو تو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس سال کا جو ہمارا تھیم ہے وہ کیا ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن کے آئینے میں جب ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی اصلاح کرنا چاہیں تو کیا ہے. تو آج ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے, اللہ عز و جل کا قانون ہدایت کیا ہے, اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ کسی کو ابھی تک ہدایت ملی کیوں نہیں, اور جن کو ملی ہے کیا یہ ان کا فیصلہ تھا یا صرف اللہ ہی کا فیصلہ تھا. انشاءاللہ ہم اس میں آج زیر حاصل بات کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اینڈ پہ پھر اپنی اور دوسروں کی ہدایت پہ لے آئے. ہم سب ایک دعا اتنی کثرت سے مانگتے ہیں, اتنی کثرت سے مانگتے ہیں, اور شاید اتنی بے توجہی سے مانگتے ہیں کہ مل بھی جائے تو پتہ نہیں کہ مانگی ہے. میں آپ سے کہوں کہ پانی لا دیں پانی لا دیں تو مجھے پتہ ہے نا کہ میں نے پانی مانگا ہے. میں اپنے کسی بچے کو کہتی ہوں کہ آپ جوتا اتار دیں تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ جوتا اتار دے. ہم سب روز دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اور سچی بات ہے کہ ڈرتے اتنا ہے ہدایت ملنے سے کہ حال یہ ہے کہ گاڈ گیو می گائیڈنس بٹ ناٹ سون. اللہ مجھے ہدایت دے پر اتنی جلدی نہ دینا. مثلا ابھی میری شادی ہو لے, اچھا ذرا میں چاؤ پورے کر لوں, اچھا میرے ارمان پورے ہو جائے, اور پھر ہوتے ہوتے اپنے بچوں کی شادیوں کی عمروں پہ کہتے ہیں اللہ مجھے ذرا اینڈ پہ ہدایت دے دینا, ایسے نہ دینا کہ میں انجوائے نہ کر سکوں. آپ کے بچے بھی آپ کو اکثر کہتے ہوں گے کہ جی خود تو آپ نے بڑے مزے کر لیے اور اب ہمیں آپ روکتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم سب سے بہت ریلیونٹ ہے. یعنی آج کا ٹاپک وہ ٹاپک ہے جس کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا اس بات کو سننے کا کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے لے کر چلیں. اس لیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے ساتھ جوڑے رکھے جڑے رہیے, اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے میرے حق میں بہت واضح ہے, اور اس کو لینے کے لیے آج سب سے پہلے ہم جو آیت دیکھیں گے وہ سورۃ صف ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. اب بالکل آپ اس ڈائیلاگ کو سمجھیے, میں ترجمہ یا نہیں کر رہی کہ پڑھ دوں اور وہ وقت یاد کرنے کے لئے ایسے نہیں پڑھوں گی. آپ اس کو انجوائے کریں, اور آپ جو لوگ سن رہے ہیں صرف سورۃ صف کی آیت نمبر 5 ہے, بس اس کا ریفرنس لکھ لیں. گھر جائیں مصحف کھولیں इस कुरान की आयत को पकड़ें। मैं अपनी बात को आज इस आयत से ही शुरू क्यों कर रही हूँ, इसकी वजह आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। अब ये डायलॉग है, वाइस काला मूसा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ली कौमी ही, अपनी कौम को कहा, क्या कहा, या कौमी, ए मेरी कौम। देखिए अंदाज कितना प्यारा है, यानी तबलीग हो के तालीम हो के तदरीस हो, अंदाज बहुत मैटर करता है। आप अपने बच्चे को नेकी की बात सिखा रही हैं, या कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को सिखा रहा है, या मालिक नौकर को कह रहा है, या आप किसी गेटमैन को कह रहे हैं गेट खोलो, आपका अंदाज कभी भी तल्ख और चुभना नहीं चाहिए। आप छुरी नहीं है, ये छुरी कहना ही इस दीन की तबलीग के अपोजिट बात है। यानी हमारी जिंदगी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात से जो बात समझने की है, सीखने की है, वो क्या है कि जब अल्लाह सुबहाना ताला आपको मुझे किसी की भी तरबियत या उसकी रहनुमाई की तौफीक दे, तो या कौमी, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे मियाँ, ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, या कौमी, या अखी, या बिनती, क्योंकि आपका जो रैपो नहीं बना तो बाद में क्या फ़ायदा। यानी कभी कभी हम ऐसे पत्थर मार रहे होते हैं कि पता नहीं किधर लग रहा है, यानी पत्थर कोई नहीं लग रहे, सच बता रही हूँ, आपके बच्चे कोई नहीं सुन रहे कि नमाज पढ़ो तो उठो तो बंद करो तो ये, वो पत्थर मार रहे हैं, इधर से उधर मार रहे हैं, असल ठिकाने पे नहीं मारते। और हमारा अंदर का जज्बा तबलीग और ममता और कुरान से मोहब्बत का जज्बा भी सरशार होता है, और एंड पे फतवा क्या होता है, ना ने नहीं सुनना, एना दे दिल बंद हो गए। आज कहते नहीं है लोग, उनको नहीं फ़ायदा होना, छोड़ो छोड़ो इनको कहने का क्या फ़ायदा है, वल्लाह ही ये गलत है। हमारा हाल आज ऐसा है कि जैसे वो डॉक्टर जो गोलियों के नश्तर चला रहा है, डिस्प्रिन भी दे दो, एस्प्रिन भी दे दो, फलां भी दे दो, कोई तो बुखार होगा ना, ठीक हो जाएगा, पता चला वो एंड पे सादा सा बुखार बिगड़ के निमोनिया में ढल गया, और इसी तरह सो ऑन। डॉक्टर गलत गोली दे दे, बाहर के मुल्क में सू हो जाता है, और जिसको दी है वो बच भी जाए ना, तो उसकी फिर अगली सारी ख्वाहिशें पूरी होती है, लाखों डॉलर्स का वो जुर्माना कर सकता है उसको कि इसने मेरे ऊपर ये किया, और लोग दुआ कर रहे होते हैं कि किसी डिस्पेंसर या डॉक्टर से गलती हो और हमें मिले। हमारे तो बंदा मर जाए, कहते हैं ज्यादा नसीब सी ला जाओ, असी की करिए। अभी रिसेंटली हुआ, सिर्फ निगलेक्ट करने की वजह से या रॉन्ग यूज करने की वजह से एक बच्ची जान से चली गई। वक्त तो आया ही होता है, बच्ची भी गई, उसका बच्चा भी गया, क्योंकि लोगों ने टैकल सही किया है, नहीं किया, अल्लाह नोज़ दी बेस्ट। और ऐसे ही एक आर्टिकल भी मेरे सामने आया था, उन्होंने कहा खुदा के लिए आर्टिकल पढ़ लें। एक बंदा कैसे, यानी वो आलिम है, इधर के नहीं है, बाहर की दुनिया के, तो उन वो पाकिस्तान में आए हुए थे, तो उनकी बीवी को कोई हल्का सा दर्द उठा, कुछ ऐसा था, खैर होते हुए ज़रा बड़ा, तो वो उनको डॉक्टर पे जो ले गए, और जो लंबी कहानी है मैं किसी दिन पढ़ के सुनाऊंगी। और वो कहते हैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि आप अपने मरीजों को घर में फकी दे लें, चूरन दे लें, उसको आप कबा बना के दे दें, लेकिन ये ना करें। बिल्कुल उनकी बीवी वेंटिलेटर पर चली गई, और एंड पे फिर क्या अल्लाह का करना हुआ कि उस दर उनको अपना कोई अजीज रिश्तेदार जो डॉक्टर था वो मिला। यानी सारी स्टोरी का अब आपके जहन में जब तजस्सुस आया होगा तो बता दूं, सस्पेंस होगा। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मौजज़ाना तौर पे जब कितने बिल पे करने के बाद, पहले ये बिल पे करें, उधर से उधर ले जाएं, स्कूल से अस्पताल ले जाएं, मेरी बीवी दो दिन के अंदर वेंटिलेटर पर आ गई, मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या इसको, और वो नहीं डायग्नोज नहीं हो रहा, उधर ले जाएं। और एंड पे जब वो वेंटिलेटर पे थी तो उस वक्त फिर उनको कहता है कि एक काउंटर पे जब मैं पैसे जमा कराने गया हूँ तो मुझे अपना एक रिश्तेदार मिला, और उसने कहा आप किधर, क्या किस्सा मुझसे, उसने खड़े खड़े डॉक्टरों का एक्शन लिया, तो उन्होंने ड्रिपों पर ड्रिपें चढ़ा दी, ओवर डोज कर दिया, और बिल्कुल वो मौत के मुँह से निकल के आई। अब मुझे आप बताइए कि एक गलत दवा देने वाला एक सेहतमंद बंदे को या थोड़े से बीमार को मौत के घाट चढ़ा सकता है, तो दीन की तबलीग क्या है? क्या ये एक रूहानी डॉक्टर नहीं होता दीनदार? क्या एक मुबल्लिग ऐसा इंसान जिसको अल्लाह सुबहाना तआला ने ये तौफीक दे दी है, क्या वो इस काबिल नहीं है? उसका कितना अहम काम है। मैं इसलिए कहती हूँ खुदा के लिए अपने बच्चों की मत ना मारे। मैं माओं को भी कहूँगी, अब मैं जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे पले, खुदा के लिए उनकी मत ना मारे। या तो हम कहते कुछ नहीं, या वक्त कहते रहते हैं, या गलत वक्त पर कहते हैं, बच्चा बैठे कार्टून में गर्क है, उसकी बला से आप जो मर्जी सिलवाते सुनाएं, आप दूर से आप भी चीख रहे हैं और कह रहे हैं चुप कर दो, बंद कर दो। तो बहरहाल ये एक साइड का नुक्ता जो आपको इसमें से मैं देना चाह रही हूँ, और वो क्या है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि बल्लिगो, पहुँचाओ, सिर्फ फरमाओ नहीं। हम सिर्फ हुक्म देकर अपने बच्चों को और अपने बड़ों को कह कह के सुन कर देते हैं, जैसे बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि असर ही नहीं रहता उस बात का। मत कहिए बार बार, माएँ कहती है बार बार कहती हूँ, 100 बार कह चुकी हूँ, मुझे माएँ खुद कहती हैं, हर वक्त कहती रहती हूँ, इनको असर ही नहीं होता। मैंने कहा ये है वजह, आप जान लीजिए, किसी मेडिकल प्रोफेशन वाले से पूछे जो हर वक्त गोलियां खाता है उसको फिर कोई गोली असर नहीं करती। ये जो आपका हर वक्त का कहना है ना, ये ठीक नहीं है, अपनी इसलाह कीजिए, बच्चे इतने बुरे नहीं है, कोई मियाँ साहब ऐसे नहीं थे बिगड़े हुए, इतने कुछ केसेस हो सकते हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत। आगे क्या कहते हैं, वक़द तालमूना अन्नी रसूलुल्लाह। देखिए जरा इसको कर्सर के साथ रखे, देखिए, और तुम खूब जानते हो कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ, कोई तारुफ नहीं, कुछ साहब के नहीं, लाख के नहीं, मैं शेख हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं मुबल्लिग हूँ, मैं फुलाऊँ किबलों का, बा इन्नी रसूलुल्लाह, बीच में आया तो अन्नी बन गया, अन्नी रसूलुल्लाह। अपना पैगाम, अपना तारुफ क्या दिया है, मैं अल्लाह का कासिद हूँ। ये है बेहतरीन तारुफ किसी भी इल्म वाले का या दीन वाले का, कि आपने आपको एम्बेसडर करे। अब वो तो अल्लाह का रसूल था, आज कौन है, दाई लल्ला। आप दाई बन सकते हैं, आप दाइया कहला सकती हैं, आप मुबल्लिग कहलाइए, आप मुबल्लिगा कहलाइए, बहुत प्यार। इसके बाद के नाम सिर्फ सबके लाख के हैं, इसलिए कभी भी अपने दिमाग में यह हवा नहीं बनाना चाहिए कि मैं आलिमा हूं या मैं फुला हूं और फुला हूं। खैर, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, किधर आया हूं, इलैकुम, यहां तक तो था तारुफ। एक रेपो बना लिया अपने और कौम के बीच में। आगे है जी हमारे मौजू से मुतल्लिक, फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु कुलूबहुम। तो जब वो टेढ़े हो गए, कजरवी हो गई, यानी जब उन्होंने ही दिल के दरवाजे बंद कर दिए, अज़ाग़ल्लाहु कुलूबहुम, फिर अल्लाह ने भी उनके दिल बंद किए, यानी जब उन्होंने रुख मोड़ा, जब वो टेढ़े हुए, तो फिर अल्लाह ने भी दिल टेढ़े कर दिए, क्योंकि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। ये हैं जी वो अल्फाज जिसमें अल्लाह ने अपना कानून हिदायत और गुमराही का नुक्ता बयान किया। अल्लाह सुबहान तआला ने इंसानों को पैदा किया और उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया, जो चाहो कर लो, जो तुम्हारा है। यानी अल्लाह ताला का कानून फितरत क्या है, इस आयत की रोशनी में देख लीजिए। उर्दू में मैं दो तीन मुहावरे बोल देती हूँ ताकि आपको मुझे नक्श हो जाए, जहां चाह नहीं वहां राह नहीं, खत्म। आपके दिल में चाह नहीं तो हमारे पांव आपके रस्तों पे लगेंगे नहीं, आप किधर आते हैं, जिधर आपका दिल लगता है। आपको पता है कोई मुंतजिर है आपका, आप कहाँ जाते हैं जहां दिल करता है कि कोई आपको देखकर खुश होगा। आप किसको बुलाते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं। जब कोई एक बार के बुलावे से, दूसरी बार के बुलावे से, तीसरी बार के बुलावे से नखरे करे, दूसरा जुमला ले लीजिए, ना मानने के सौ बहाने, तुम्हें नहीं चाहिए हिदायत, घर बैठो, तुम रूठे हम छूटे, तीसरा ले लीजिए। अल्लाह की हिदायत को मुफ्त बढ़ी है कि सेल है और बिक नहीं रही, और एक गिव जाए दस दे दो। नंबर एक, हिदायत बहुत कीमती चीज है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इस हिदायत को सबसे पहले रखा। देखिए कुरान शुरू होता है सूरत फातिहा से, अल्लाह सुबहाना ताला ने हिदायत की दुआ से कुरान शुरू किया। दौलत से नहीं, माल से नहीं, औलाद से नहीं, रिस्क से नहीं, बड़े घर से नहीं, हिदायत से। क्यों? इसलिए कि हिदायत वो मैजिक स्टोन है, जिस नेमत को हिदायत टच हो जाती है ना, वो आपके लिए रहमत बन जाती है। मैं आपको मिसाल देती हूँ, औलाद रहमत है, औलाद नेमत है, लेकिन नेमत हिदायत नहीं है कि इस औलाद को पालना कैसे है, तो वो ही फितना बनेगी। अगर लफ्ज फितने को आपने एक्सप्लेन करना हो ना, तो उसको समझ लीजिए कि हर वो चीज जो हो आपके फायदे की, लेकिन उसका मिसयूज आपको नुकसान दे दे। मसलन छुरी, छुरी फायदे की चीज है, गोश्त काटते हैं, सब्जी काटते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है छुरी चलानी कैसे है। उसका वो एक कटर होता है ना, और एक उसके ऑपोजिट जो ऊपर वाली चीज है, वो जरा मोटी होती है। आप छुरी यानी यूं पकड़ते हैं ना, तो यूं पकड़ने की बजाय उसकी टेढ़ी साइड नीचे करें, काटते रहें, आपका हाथ कट जाएगा, गोश्त नहीं कटेगा, और सब्जी काट रहे हैं तो पता नहीं अजीब गरीब कटेगी। और खुदा न खास्ता कोई उसके चाकू को पीछे और अंदर जो दस्ता है उसके आगे रखे, तो वो गोश्त नहीं कटेगा, ये गोश्त कटेगा। बस छुरी रहमत थी, आपको उसके इस्तेमाल करना ना आया तो वो फितना बन गई। औलाद नेमत है, औलाद रहमत है, लेकिन जब हम अपने औलाद की तरबियत से वाकिफ नहीं होते, जब हमारी औलाद हमारे लिए अल्लाह का एक तोहफा तो हो गई है, लेकिन ये नहीं पता इस तोहफे को इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको भी अपना कंप्यूटर दे दूं, खोलने बंद करें, देखें क्या होगा थोड़ी देर में, क्योंकि आपको पता ही नहीं इसने खोलना कैसे। ये माइक आपको क्या पता कैसे खोलना है। हम इस तरह मरोड़ते हैं अपने बच्चों के कान। तो जिस चीज को आपको इस्तेमाल नहीं करना आता और आप फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं, तो वो आपके लिए फितना बनेगी। गाड़ी कितनी बड़ी नेमत है, आती कोई नहीं चलानी, तो बैठ जाए ड्राइविंग सीट पे, तो क्या होगा, वो आजमाइश बन जाएगी। औलाद नेमत कब, जब औलाद की तरबियत आए, तो फिर क्या पता चला, औलाद नेमत है लेकिन हिदायत की दौलत से महरूमी उसको आपके लिए फितना बनाती है। ये जो आज हमारे कद से बड़े एक एक फुट बड़े बच्चे हैं, ये खुद ही बिगड़ गए। क्या वो बच्चे खुद ही बिखर गए? जो उन्होंने देखा हमने दिखाया वो देख रहे हैं, जो हमने पहनाया वो पहन रहे, जिस चीज पे हमने रोका ही नहीं उन्होंने कहा ये साइलेंट अप्रूवल है, आपका एक 4 साल का बच्चा एक कंप्यूटर गेम खेल रहा है, आपको उसमें 10 चीजें दिख रही हैं, आपके पास 50 दलाइल होंगे कि ये नहीं ठीक देख रहा है, और आप क्या कह रहे हैं, ये बच्चा है, इसको समझ। हालांकि बच्चे, मैं कहती हूँ आजकल के बच्चे बड़ों से भी बड़े हैं, अपनी उम्र से कम अज कम 5 साल बड़ा बिहेव करते हैं बच्चे। मैं दारा दिन जहाँ होती हूँ मैं बच्चों को ऑब्जर्व करती हूँ, खुद ही हो रहे होते हैं, मेरा दिमाग ही उनके साथ चल रहा होता है। फिर बड़ा हो गया, नाना बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, नाना जवान खून है, ये घर से भाग जाएगा, ये छोड़ जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, शादी कर दी। लो अब शादीशुदा बच्चे को क्या कहे, बीवी क्या कहेगी, लो हम इसको डांटेंगे तो इसकी बीवी इसकी इज्जत नहीं करेगी, और फिर अल्लाह के हुक्म से एक मुन्ना मुन्नी आ गया, आप कहना है बच्चों का प्यो हूं, इन्हू मैं की समझावा, और फिर वो कहते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान ते आते हैं। हमारी अपनी हिदायत भी पूरी नहीं होती, हमारे बच्चों की भी हिदायत गुम चुकी होती है। इतनी बात को समझा लें कि इस आयत में अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाने का एक बहुत गहरा नुक्ता दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को हिदायत और गुमराही दोनों के चैनल दिए हैं। यानी आपके पास चैनल होता है ना, तो आप उसको देखें, अपने जहन में लाएंगे तो समझ जाएंगे। रिमोट कंट्रोल, आप खबरें सुन लें, आप गाने सुन लें, आप इस्लामिक प्रोग्राम सुन लें, आप पीस टीवी खोल लें, आप फलां खोल लें, आपकी मर्जी है ना। तो लिखिए एक जुमला कि हिदायत और गुमराही दो चैनल्स हैं, और उसका रिमोट कंट्रोल आपके मेरे हाथ में। अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके मेरे लिए 4 पॉइंट रखे हैं। नंबर एक, इंसान अगर हिदायत की राह इख्तियार करेगा, अगर आप करेंगे, तो दूसरी बात अल्लाह उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोलता जाएगा, और तीसरी बात कि अगर इंसान कज रवी इख्तियार करे, टेढ़ा करे, मुंह ही ना सीधा करे, आंखें ही ना खोले, कदम ही ना उसके हिदायत की तरफ चले, तो वही रास्ता उसके लिए आसान कर दिया जाएगा और फिर वो उस पर बढ़ता ही जाएगा। और इस बात को समझना है तो सूरत दाहर, जिसको सूरत अल इंसान भी कहते हैं, बिल्कुल उसकी शुरू में आयत 3-4 में आता है, इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, और इसे रास्ता भी दिखा दिया। अब चाहे तो वो शुक्रगुजार हो जाए, चाहे तो ना शुक्रा हो जाए, अल्लाह ने आपके मेरे लिए हिदायत पे जाने का रास्ता भी इतना ही आसान किया जितना गुमराही पे जाने का। इस पे तकरीबन पिछले 7-8 साल से हर साल दौरे कुरान में 8वां पारा आप जाकर सर्च करें, दौरे कुरान DQ22 से लेके 21, 2019 बैकवर्ड चलेंगे ना, तो मैं आपको आयतें भी बता रही हूँ कि 8वां पारा जिसमें सूरत अल अराफ में एक आयत आती है कि जिसमें अल्लाह ने सबील उर रुश्द और सबील उर गई का तारुफ किया। हर साल एक मैप दिखाते हैं हम लोग डिफरेंट, उसका ज़रा बहुत चेंज करके खोलिए, जाकर सुनिए, अलग से भी इस पर लेक्चर्स हुए हैं कि इंसान हिदायत के रास्ते पर चलेगा तो भी अल्लाह ताला उसको चला देगा, गुमराही पे चलेगा तो गुमराही पे भी चलाएगा, और ऐसे ये क्रिस क्रॉस, ऐसे 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 जैसे स्वेटर नहीं बनते आप, हर राउंड अबाउट, हर क्रिस क्रॉस के ऊपर मौका होता है कि गुमराह शख्स आओ वापस हिदायत पे आ जाओ, उसके साथ ही उसको बुलाते हैं, कोई गम आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई खुशी इतनी बड़ी मिलती है, अल्लाह ताला अच्छा मामला कर रहे होते हैं उस बंदे का। आपकी मेरी जिंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं कि अल्लाह कहते हैं उस रोड से उतर कर इस रोड पे आ जाओ, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हिदायत पे चलो या फिर तुम गुमराही पे आ जाओ, तुम्हारी मर्जी है, मैंने बिल्कुल रास्ता खोला है। आप देखिए ना, अभी यहां से आप निकली है, इस सिस्टर के घर से हम जब बाहर जाएंगे तो रोड इधर भी जाती है उधर भी है, इल्ला ये क्योंकि वन वे रोड हो, ऐसी है ना, सीधी रोड की, आप चाहे इधर मोड़ लें चाहे इधर मोड़ लें, आपकी मर्जी है, आप जिधर भी मुंह फेरेंगे, जिधर भी आप जाएंगे, अल्लाह आपके लिए आसान कर देगा। तो हिदायत और गुमराही दो साइमल्टेनियस नहीं है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको अपने हाथों से बताऊं, आप देखिए कि ये पेंसिल, आप देखिए ये एक पेंसिल है, एक और भी अगर हो ना मेरे पास कोई और रंग की या कोई भी किसी तरह की कोई चीज दे, मैं आपको भी दिखाती, ये एक रास्ता है। हमारे जहनों में हमेशा हिदायत के रास्ते के साथ क्या आता है, सीधा रास्ता। अब आप देखिए कि जब आप कहते हैं ना इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, आप देखिए यहां आपके जहन में क्या आता है कि एक बंदा खड़ा था, सीधे हाथ पे मुड़ा, चलता गया, जी ये हिदायत का रास्ता। और इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं सबीलुल जन्ना, रोड टू जन्ना, इंग्लिश में रोड टू जन्ना एक कोर्स है जो यंग बच्चियों के लिए ऑफर किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली वो पूरा हुआ है, अब नया कोर्स शुरू हो रहा है, ज़हरावैन अपनी बच्चियों को उसमें एडमिट कराइए अगर वो इंग्लिश फेमिलियर है, वीकेंड्स पे होता है, कोई भी कर सकता है लेकिन इंग्लिश की वजह से हम बाहर की दुनिया में इसको यंग्स के लिए कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक बंदा इधर गया, कुछ लोग मुआशरे में हमारे सामने ऐसे होते हैं जो नेकियां कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, ठीक है, आप इधर से इधर, इधर से इधर इनको ला, ये है जी जन्नत, सीधे बस एक दफा इस पर चढ़ गए अब नहीं उतरना, है ये कॉन्सेप्ट हमारा। और एक शख्स इसको उलट करती है, ये देखिए, ये है एक शख्स, अल्लाह ना करे हम में से कोई हमारा प्यारा हो, अब इस पे चला, गुनाह किया, गलत किया, और ये है जहन्नुम। और हमारे तस्वुर में अमूमन ऐसे आता है, एक रास्ते पे चल रहे हैं सीधे, आप जन्नत के रास्ते पे चढ़ गए, आप नेक हो गए, बस दिन ब दिन नेकियां और इधर जन्नत, और बेचारा कोई फंस गया तो ये इधर आएगा। अक्सर लोगों के जहनों में हिदायत और गुमराही के ये दो रास्ते हैं, ये रॉन्ग है। अब आप देखिएगा, हिदायत का रास्ता ये था ना, एक बंदा हिदायत के रास्ते पे जब चलता है ना, इस पे चलता है, दिन ब दिन आगे ऊपर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला फिर खुद ही रास्ते खोलता है और ये अल्लाह का फैसला है। आप जिस रास्ते पे जाएंगे अल्लाह आसान कर देगा। अब क्या हुआ, ये यहां आ गया। अब ये मेरी उंगलियां जहां खड़ी हैं, यहां आप देख रहे हैं क्रिस क्रॉस है। अब अगर ये बंदा जो हिदायत के रास्ते पे चल रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए केयरलेस हो जाए, वो इस मोड़ पे गलत टर्न लेके इस पे जा सकता कि नहीं जा सकता? जा सकता है ना। अब ये बंदा बड़े खतरे में, इधर आके ये इधर चला जाएगा, नीचे पता ही नहीं चलेगा, और इसके एंज पे जहन्नुम है और इसके एंज पे जन्नत है, ये आप याद रखिए इस वक्त। अच्छा, अब आपने मिसाल नेकी का कोई काम शुरू किया, चले हम अक्सर इजी समझते हुए कुरान के सफर की बात करते हैं, आपने मेरे कहने पे सुन लिया कि अच्छा जी कुरान सबीलुल जन्ना एक कोर्स होता है, हर साल नया होता है, अच्छा 21 जो है वो तकरीबन 10वें पारे पे पहुंच गया, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा 23 भी शुरू होना है दरे कुरान के बाद, आप कहते हैं मैं कुरान कोर्स शुरू करती हूँ। आपने इस तरह मेरे साथ शुरू किया, चले आप कहते हैं कि जी मैं SJ 22 में दाखिला ले लेती हूँ और अभी जो 5-6 माह है उसमें इसी को करती हूँ, फिर अगला सोचूंगी। आपने ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप वेबसाइट पर गए, nurulquran.com खोला, यू के लफ्ज के साथ NURULQURAN.com, चौथे नंबर पे स्लैश में कोर्सेज था, आपने कोर्सेज में खोला, ऊपर ही आपको सबीलुल जन्ना 22 दिखेगा, आप जाकर फॉर्म फिल करके रजिस्टर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े शौक से आप कहते वो, अरे सूरत तौबा, सूरत अनफाल, सुभान अल्लाह, ईमान पूरा, ये वो। अब आप यहां पहुंच गई, आप कहते हैं शुक्र है, अब मैं ये भी करूंगी और अगले कोर्स में पिछले 10 पारे भी करूंगी। अब यहां पहुंच गई हैं आप, जब यहां आई, हो सकता है कि दिसंबर की छुट्टियों के बाद आपका कोई उम्रे का प्लान हो सकता है आपकी फैमिली में कोई शादी हो जिन्होंने ये ज्वाइन किया, या हो सकता है कि इनकी घर मेहमान आ जाए बाहर से, या कोई और भी मसरूफियत, अब इनका ये कोर्स खटारे में पड़े, एक आध क्लास मिस होगी, उस दिन तो मेहमान थे, उस दिन तो ये इनकी जिंदगी का ये क्रिस क्रॉस है, दैट इज वेरी डेंजरस। हमेशा याद रखिए, और ये जो ऊपर चढ़ाई है ना, ये इनकी मुश्किलें हैं जो इनको इस कोर्स के साथ कॉप करते हुए आ रही हैं। हर नेकी हर हासिल में तकलीफें हैं, बच्चा भी दरख्त पे लगा हुआ नहीं मिलता, गोद में नहीं आता, हर दर्द के साथ अल्लाह ये सबक दे रहा होता है कि इफ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग यू हैव टू सफर, तुम्हें गुजरना पड़ेगा। अब ये क्या कहती हैं, नहीं इनकी एक दो क्लासें छूट गई, शुरू में कहेंगी अच्छा मैं इसको रिकॉर्डिंग से कर लूंगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्सेस मिल जाता है कि मजबूरियों में आप ले लेंगे। अब क्या हुआ, कुछ दिन गुजर गए, फिर ये कहती हैं अच्छा ये तो मेरी एक हफ्ते की क्लासें छूट गई हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं देख लूंगी। अब 2-3 क्लासें और छूट गई, एक दो हफ्ता और गुजर गया, मैं मान तो गए घर में, इनको याद ही नहीं रहना कि मेरी क्लास का दिन था। शुरू में ये क्या सोचेंगी, अच्छा मैं क्लास ले लूंगी, अब जब ये लेंगी ना रिकॉर्डिंग से तो इनको मुश्किल लगेगी, कभी नेट नहीं, कभी ये नहीं, वो नहीं, आखिर आपका था 4 क्लासों के बाद, हो सकता है इनको मैसेज भी आ जाए कोर्स वालों से कि खैरियत है, आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है। अब क्या होगा, ये कहेंगी नहीं अच्छा ऐसा करती हूँ, वो रमजान कौन सा दूर है, तो मैं जो नया सबीलुल जन्ना आएगा ना मैं वो ज्वाइन कर लूंगी। इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये यहां से अब इस पे उतर गई, ये डी ट्रैक हो जाता है बंदा। ये सिर्फ कोर्स में नहीं है, आप कोई नेकी करते हैं कुछ दिन बड़े पक्के हैं बाद में छोड़ देते हैं, आप डाइटिंग शुरू करते हैं कुछ दिन बाद आप दूसरी रोड पे चले जाते हैं, ये बार बार आपकी जिंदगी में, और ये यहां नहीं आना, इसके बाद इसने फिर नीचे आके इधर फिर आना है, फिर आना है। हिदायत और गुमराही का रास्ता क्रिस क्रॉस है, जिंदगी के आखिरी दम तक, हत्ता के सुना हुआ है कि मौत की सख्तियों में भी शैतान आकर कुछ कहता है कि मुझे सजदा कर दो या पानी पी लो, और वहां भी वो इंसान जो अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई ना कि रब्बी आइनी अला गमरात इल मौत व सकरात इल मौत, कि अल्लाह मुझे मौत की डुबकियों और बेहोशियों में भी शैतान से बचाना, जब तक एक पांव जन्नत में और एक बाहर ना आ जाए आप और मैं सिक्योर नहीं है। हजरत उमर फरमाया करते थे कि मेरा एक कदम जन्नत में और एक उससे बाहर हो मैं फिर भी खुद को जन्नती नहीं कहूंगा जब तक मेरा दूसरा ना। आप मैं क्या, एक कोर्स करके बड़े नेक हो गए, एक हज करके नेक हो गए, एक उमरा करके नेक हो गए, हमारा एक बच्चा हाफिज बन गया तो हम नेक हो गए, नहीं हुए, ये सारी जिंदगी का सफर है। इसलिए जिंदगी के आखिरी लम्हे तक दुआ और नमाज साथ चलेगी, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। तो आज अभी तक जो बात सुनी है इसको समझें, ये कितनी कीमती चीज है। आपका सोना चोरी हो जाए, खैर ना पहनने, आर्टिफिशियल पहन लीजिएगा, चोरी हो जाएगा फिर मिल जाएगा, हिदायत एक दफा आपकी गुमी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये इसको ऐसे समझिए कि आप एक हाईवे पे गए, जब आप हाईवे पे जाते हैं ना तो उस वक्त क्या होता है, आपकी कोई एग्जिट मिस हो जाता है। अब जब एग्जिट मिस हुआ ना, तो आपको आगे कई किलोमीटर जाकर ना फिर यू टर्न लेना पड़ता है। मोटरवे की तो मिसाल बहुत ही प्यारी है ना आपके पास। आप यहाँ शहर में लाहौर में मोटरवे पे सफर करते हैं, सिर्फ उसका एग्जिट लेने में कई दफा आपको 20-25 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है ना। हिदायत के रास्ते पे एक दफा अगर आप चढ़ गए ना, वल्लाही मैं आप सबको ये कहूंगी, बी केयरफुल। कोई खुशी का मौका आपको ना इससे गिराए, ना गम का मौका। अच्छा, कभी गम भी आ जाते हैं, कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी कुछ। अभी तो आपने इसको सुना ना, अब मैं आपको दूसरा भी सिखाती हूँ। इतनी बात क्लियर है? इससे पता क्या चला कि हर नेक शख्स खतरे में है। वॉच योर स्टेप्स, वॉच योर वर्ड्स, वॉच व्हाट आर यू लुकिंग। क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, किसी सेकंड आपको गलती लगेगी और आपका सारा तकब्बुर हाथ में आएगा। आप जो बड़े नेक बने फिर रहे थे ना, लोगों को मुसीबतों में डाल रहे थे, आप भी उसी पे आ जाएंगे। घर में आपके ड्रामा चल रहा है, फिल्म चल रही है और आपको बुरा लग रहा है, आपके सर में दर्द है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, चूचा कर रहे हैं, आप कहते बंद करो, ये क्या मुसीबत है। वल्लाही सिर्फ 10 मिनट चाय का कप लेके आप बैठ जाएं उधर, मैं नहीं करी बैठे, आपको मजा आने लगेगा। आपके लिए अड्डा भी नहीं पड़ा, चलो अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तो वो आप इधर से उतर के इधर चली गई। अपने घर में ये नक्शे बना के रख लें, ये जायचा बना के रख लें कि जरा किसी की दावत पे या किसी की खुशी के लिए आप जाके बैठे। आप दूर होते हैं ना किसी माहौल से, तो आपको वो बातें बड़ी बुरी लगती हैं, ये ऐसे हैं जी, ये करेंगे वो करें। आप जाके बैठे, आपको बुरी नहीं लगेंगी। मेहंदी हैं, चले खुल के बात कर लेते। मेहंदी, उपटन, तेल, रस्में, गाने, टप्पे, नाच, डांस, आपको जहर लगता है। कोई पकड़ के खुशी से, गुस्से में, नाराजगी में आपको ले गया और आप रेजिस्टेंस छोड़ दें, मजा नहीं लगेगा। कई माजी की यादें आ जाएंगी आपको उन गानों को सुनकर। और आज हम कितने उलझे, हम कितने जागू पे आए, ये आज एक मुसलमान फैमिली की बातें नहीं रह गई। ये वल्ला ही मैं सोचती हूँ अक्सर, मुझे अभी किसी ने कहा कि फलां जगह शादी है, ये वही जो हमारे कल्चर में मजबूरियों के नाम पर वहां पहुंच गई, और वो कहती हैं कि शादी से पहले रिहर्सल हो रही है डांस की, लड़के लड़की ने रिहर्सल करनी है और डेकोर हो रहा रेत से भी। जो मैं कहानियां सुन रही थी, मैंने कहा अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे। कभी फिल्मों की शूटिंग होती थी और फिल्मों की शूटिंग की रिहर्सल होती थी, आज हमारी शादियों की रिहर्सल, वो ना महरम मर्द है जिसके साथ आप हाथों में हाथ डालकर डांस करना सीख रहे हैं। निकाह तो आपका होना है शादी से एक दिन पहले, नहीं कोई बात नहीं, हो ही जाना। और वो तो जो करेंगे, जो बाकी लड़के लड़कियां डांस करेंगे, क्या हो गया हमें, आसमान नहीं गिरता और जमीन नहीं पड़ती। लेकिन ये यहां बैठकर मुझे दर्द आ रहा है। मैं अपने ऊपर भी कोई फतवा नहीं देती कि मैं बड़ी नेक हूं, अल्लाह ना करे मैं ऐसी महफिल में पहुंच जाऊं और मैं जरा सी थोड़ी देर के केयरलेस ड्राइव करूंगी तो मैं भी वैसी हो जाऊंगी। क्योंकि वमा उबर रियो नफसी इन नफ्स लम्मारतुम बिस्सु, 13वें पारे की पहली आयत, मैं अपने नफ्स को कोई इतना भाग नहीं कहता, नफ्स हमेशा बुराई का दावा देता। इसीलिए फिर वो लोग जो इन महफिलों को छोड़ते नहीं है ना और साथ कुरान भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वल्लाही मैं कहती हूँ, या तो ये महफिलें छोड़ दें, ये गुनाह छोड़ दें, या फिर आप कुरान पढ़ाना तो बिल्कुल छोड़ दें। आपको हक नहीं है पढ़ाने का, पढ़ते रहिए, अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि पढ़ने वाले भी जाएंगे तो भी माशरे में बातें ही होंगी। सारा हफ्ता तो ये दरसों और क्लासों में रहती हैं और आज देखो किधर हम गए थे उनको खुश करने, वो हमारे देख के खिसियानी बिल्ली की तरह आसरे आ गई हैं ये भी। हाँ, कोई नहीं बच सकता आज के दौर में मजबूरियों के नाम पर, हमारी ना उधर इज्जत रहनी है ना इधर। और उधर हम डर रहे होते हैं कि कोई दीन वाली बहन तो नहीं बैठी, कोई हमारा उस्ताद तो नहीं आके बैठ गया। लोग खौफ खाते हैं, सारा साल रोज मिलेंगे और उस दिन दुआ करते हैं कि ये शहर में से निकल ही जाएं ताकि हम अपने सगन पूरे कर लें। ये सच्ची बातें हैं, इसमें एक बात भी मुबालगे की नहीं है। फलम्मा जाहु अजाग अल्लाहु कुलूबहुम, तुम रूट के तो देखो अल्लाह तुम्हें छोड़ता कहां है, ऐसा फेंकेगा, ऐसा फेंकेगा, पस्तियों में गिर जाओगे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। क्योंकि लकद खलकनल इंसान नफी अहसनी तकवीम सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन, तुम असफल साफिलीन में से हो जाओगे और तुम कभी अपने टेढ़पन का सिरा तो ढूंढो। अब आप देखिए कि ये स्टोरी तो आपको बहुत दुखी लगी, इट्स सो सैड स्टोरी, यानी कह लीजिए कि डिस्करेजिंग स्टोरी है कि एक हिदायत पे जाता जाता इधर गिर गया। और आप देखिए कि अगर ये इस पे रहता ना, यही सिस्टर जो भी थी या जो भी है, तो ऊपर पहुंच जाती ना इसके सिरे पे, ये जन्नत थी, ये आला दर्जे थे, ये अहसनी तकवीम थी। अब उन्होंने अपनी ख्वाहिश की वजह से अपने आप को नीचे गिराया। और यही मिसाल अगर आप में से कोई स्टूडेंट है तो 8वें पारे में सूरत अल अराफ में उस शख्स की, नहीं वतल अलैहिम नबल्लज़ी आतैना हु इल्म, इल्म दिया था लेकिन फन सलह मिनहु, इल्म का बोझ नहीं सह सका और वो भटक गया, वो एक किरदार है उसकी बात है।